ओम शांति। तो भारत के कोने कोने से, कई स्थानों से प्यारे बाबा के प्यारे बच्चे होवनहार देवता ज्ञान सरोवर में इकट्ठे हुए हैं। देखिए नाम ही कितना अच्छा है स्थान का, ज्ञान कि अब हम अनुभूति करें कि विश्व घड़ी में क्या बजा है। क्योंकि जैसा समय होता है वैसा ही व्यक्ति कर्तव्य करता है। तो सबसे बलवान समय है, समय के अंदर परमात्मा भी बंधे हुए हैं, ड्रामा भी बंधा हुआ है, हम सब बंधे हुए हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन, तो आप देखेंगे कि आखिरकार सबसे बड़ा समय है। और आप चाहते हैं इस बात को रिवाइज करना, स्मृति में लाना कि वर्तमान समय का पुरुषार्थ। तो वर्तमान समय, जैसा मैंने कहा कि समय का पता लग जाए तो व्यक्ति जाग जाता है, समय के अनुकूल चलता है और समय हमेशा आगे को बढ़ता है, समय कभी पीछे नहीं जाता। जो बीत गया सो बीत गया। अब वर्तमान समय कौन सा है, तो हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय अंतिम समय है। तो प्रश्न का उत्तर बहुत सीधा साधा है कि वर्तमान समय का पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, जो अंतिम समय का पुरुषार्थ है। क्योंकि जब वर्तमान समय अंत को पहुंच जाता है तो उसको फिर अंतिम समय ही कहा जाता है। और अंतिम समय में समय का अंत तो है ही, साथ साथ हम सबकी व्यक्तिगत तौर पे अंतिम घड़ी कभी भी आ सकती है। अगर अंतिम समय आने में मान लो एक हफ्ता पड़ा है मान लो, पर अंतिम घड़ी आने में कितना टाइम लगता है। इसलिए जिसने समय की यह पहचान की कि हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो, वो सबसे पहले पास विद ऑनर्स हो गए। हम जानते हैं ये किसके बोल हैं, किसके बोल रहे कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, सिर्फ समझो नहीं बल्कि वास्तव में समझा। तो जिन समझा तिन पाया, तो हमारी प्यारी जगदम्बा मातेश्वरी जी ने सबसे पहले पास विद ऑनर कर लिया। तो इसलिए हमको ये देखना है कि अंतिम घड़ी का पुरुषार्थ यानी अंतिम घड़ी के लिए हमने क्या पुरुषार्थ करना है, या आईने में देखना है कि अंतिम घड़ी तो आ गई, पुरुषार्थ कितना किया। वैसे तो बाबा ने हमको रेडी और एवर रेडी का पाठ काफी समय से पढ़ाया है, और बाबा ने ये भी कह दिया है कि लेट तो हो चुका है, टू लेट का बोर्ड लगना है, और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो फिर कहा जाता है कि जब चिड़ियां चुग गई खेत फिर पश्चाए क्या होता। तो इसलिए सामने आईने में टू लेट दिख रहा है और उसके नीचे पश्चाताप शब्द बहुत मोटे रूप में लिखा हुआ है। और जैसे कोई भी चीज उस अपना समय आने से पहले अपने थोड़े थोड़े आसार दिखाती है, अर्थात जब बरसात आनी होती है तो थोड़ा समय पहले ठंडी हवा हो जाती है, इसी प्रकार से टू लेट और टू लेट के वक्त होने वाले पश्चाताप की फीलिंग भी आत्माओं को अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार आनी शुरू हो गई है। क्योंकि बाबा ने बताया है कि और सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन जो आपने पुरुषार्थ किया है या पुरुषार्थ करने का मौका था पर नहीं किया है, उसका रिजल्ट हर एक को अपने अंदर पता लगता रहता है। तो इसलिए बहुत अच्छा टॉपिक है। आप अपने अपने स्थान से फारिग होकर इस समय ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, तो आइए इस बात को सिमरन में लाएं, स्मृति में लाएं कि अंतिम समय तो आ गया, अंतिम घड़ी कभी भी आ सकती है, और मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ। तो आप देखिए, बाबा ने बहुत बहुत आसान हमको रिजल्ट देखने की थर्मामीटर दिया हुआ है। बाबा कहते हैं एक है स्मृति स्वरूप और दूसरा है सोचता स्वरूप। जो मनमना भव होकर के, बाबा ने कहा है मनमना भव एक छु मंत्र है, शिव मंत्र है, और मनमना भव से आप अपने मंजिल तक पहुंचे ही हुए हैं, पहुंच कर वापस आए हुए हैं कि बाकी सारा समेट करके हम वहां खाली होकर हल्के होकर लाइट और माइट स्वरूप होकर फाइनली पहुंच जाए। क्या हम दिल से मन से मनमना भव हैं या बुद्धि से सोचकर हम अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को, अपनी प्रारब्ध को खींचते हैं? बुद्धि से खींचना पड़ता है अपनी तरफ, और मन से आप पहुंच जाते हैं जहां जाना होता है। इसलिए बाबा कहते हैं चेक करो। क्या चेक करो? कि मैं सोचता स्वरूप हूं या स्मृति स्वरूप हूं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सुबह के वक्त से लेकर जब से आंख खुलती है रात्रि तक, बल्कि सोते हुए भी कोई देखे आपका चेहरा तो क्या दिखे। हम जानते हैं जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ जाता है तो जो उसको मृतक शरीर को देखने आते हैं वो चेहरे को देख करके वर्णन करते हैं, अगर चेहरा शांत है बिल्कुल, तो कहते हैं इसने अपना शरीर शांति से छोड़ा, देखो इसके चेहरे पर संतोष झलक रहा है, बिल्कुल शांत है। और अगर मरने के बाद भी चेहरे पर कुछ परेशानी या कुछ सोच के चिन्ह हो, अर्थात उसने अपनी अंतिम घड़ी किसी चिंता, किसी सोच विचार, किसी पश्चाताप में बिताई हो प्राण निकलते समय, तो वह चिन्ह भी उसके चेहरे पर प्रकट होते हैं। इसी प्रकार से निंद्रा को देखें कि जब हम सोते हैं तो सोते समय हमारी निंद्रा की स्थिति कैसी है, क्या हम निंद्रा योग, सोचते सोचते ही रात कट जाती है। सुबह अमृत वेला जो बाबा ने प्रभु प्रसाद देने का मुकर्रर समय किया हुआ है, उस समय खुशी खुशी भाग भाग कर फ्रेश बिल्कुल हम बाप के पास पहुंचते हैं, या उस समय ऐसे लगता है कि सारे शरीर से प्राण निकल गए हैं, एक एक अंग टूट गया है और सब बहुत मुश्किल लग रहा है उठना बैठना और फिर अमृत वेले पहुंचना, ये सारे चिन्ह है। इसलिए बाबा कहते हैं कि खिले गुलाब जैसा खुशनुमा चेहरा, जैसे कोई रोज गार्डन को देखकर, बल्कि रोज गार्डन के समीप पहुंचते हुए अभी रास्ते में ही उसको इस प्रकार का वाइब्रेशन आ जाता है, ऐसा वातावरण दिखता है, ऐसा वायुमंडल दिखता है कि वाह वो सामने रोज गार्डन खिले हुए गुलाबों का है और मैं उसकी तरफ पहुंच रहा हूं, तो उसके मन से अन्य सब बातें, कांटों का जंगल, झाड़ियां, जिस रास्ते से वो आया सब भूल के उसका मन रोज गार्डन में तब से ही मगन होना शुरू हो जाता है। कोई भी मंजिल समीप आती है तो उसके आसार और चिन्ह पहले से महसूस होते हैं। इसलिए अब हमको देखना है कि प्यारे बाबा ने संगम युग शुरू किया, हम सब के लिए अपने अपने समय पर संगम युग शुरू हुआ हम जानते हैं, तो हमारा ब्राह्मण जन्म की जो जन्म पत्री है वो उस दिन से गिनी जाती है जिस दिन से हमारे लिए संगम युग शुरू हुआ, अर्थात हम बाबा के मुख वंशावली शूद्र से ब्राह्मण, पतित से पावन बच्चे बने, लौकिक से अलौकिक बच्चे बने। ये संगम युग अलौकिक युग भी कहलाता है, हमारा जन्म भी अलौकिक है, हमारे माता पिता बंधु सखा स्वामी सब कुछ वो भी अलौकिक हैं, हमारा जो परिवार है या जो छोटा सा संसार है ब्राह्मण का वो भी अलौकिक है। तो अलौकिक में हम तब से लेकर अलौकिक रीति से चले हैं, या अलौकिक में लौकिकता भी आई है, और आज की डेट में वर्तमान समय कितना परसेंट हम लौकिक हैं, कितना परसेंट हम अलौकिक हैं। परसेंट शब्द क्यों यूज किया जाता है? एक होता है कि कोई चीज है या नहीं है, जैसे दिन और रात है, या तो रात है या तो दिन है, लेकिन कोई चीज जो होती है वो एक ही चीज में दो चीजें होती हैं, जैसे दूध और मिलावट वाला दूध। अब जब एक चीज में दो चीजें होती हैं उसमें फिर परसेंटेज निकलती है। ये दूध में कितनी मिलावट है, कितने परसेंट दूध प्योर है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बन गए, और एक बारी बन गए तो बन गए। अब हमारा ब्रह्मा कुमार और कुमारी का टाइटल तो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं है। एक बार हम बाबा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन बन गए तो दुनिया की कैटेगरी से तो अलग हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरे छोटे से संगम युग के संसार में जो कुछ भी घटता है उसका फिर प्राप्ति, उसकी जो प्रारब्ध है, उसका जो फल है, वो सतयुग के पहले जन्म के विश्व महाराजन विश्व महारानी पद से लेकर त्रेता के अंत के लास्ट प्रजा की भी प्रजा के पद तक है। तो वो किस आधार पर है? तो बाबा ने कहा है कि जो यहां उसका ही प्रतिफल वहां। अगर यहां स्वराज्य अधिकारी हैं और जितने परसेंटेज में है, जितना समय है, उसी अनुपात में वहां हम विश्व के राज्य अधिकारी हैं। अगर हम स्वराज्य अधिकारी बनने में देर करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो वो जो स्वर्ग है या त्रेता है उसमें एंट्री होने में हमारी देर हो जाएगी। सीधा सीधा हिसाब है। बाबा कहते हैं कमाई अनगिनत है, तो कमाई का घाटा अर्थात कमाई को मिस करना वो भी उसी हिसाब से है। तो अनगिनत कमाई है, तो अनगिनत कमाई की से लापरवाही भी हो सकती है। इसलिए हमको अब देखना है, अपने चिन्ह देखने हैं, आसार देखने हैं। तो पहली बात कि मैं मन से सारा समय अपने अलौकिक जन्म और अलौकिक हीरे तुल्य जीवन की स्मृति में रहता हूं, नहीं तो कितने परसेंट में रहता हूं। मुझे वहां की खींच ज्यादा पड़ती है या यहां की खींच ज्यादा है? क्योंकि संगम युग पर भी बॉडी कॉन्शियसनेस को हम अपनी बुद्धि के तर्क से सोल कॉन्शियसनेस समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अमृत वेले उठने में अगर उमंग उत्साह खुशी और अमृत वेले का महत्व दिखाई नहीं देता तो क्या होता है कि मैं थका हुआ हूं। बाबा कहते हैं योग ही करना है ना, तो लेट के ही कर लेता हूं। अच्छा, अब आप देखिए आत्मा थकी हुई है या शरीर थका हुआ है, या शरीर आलस्य में है या अलबेलेपन में है, लेट के ही योग कर लेता हूं। अच्छा भाई बैठ ही जाओ। नहीं, बैठ के और थकावट बढ़ जाएगी। अब ये थकावट शरीर की है या आत्मा की है? आप सोच सकते हैं कि आत्मा को ना तो लेटने की जरूरत है ना बैठने की जरूरत है। फरिश्ता भी कभी सोया हुआ आपने नहीं देखा होगा, और लेटे हुए जैसे विष्णु जी शेष सैया पर लेटकर विचार सागर मथन करते हुए अति इंद्रिय सुख में दिखाए जाते हैं, और जो पांच सिर वाला सर्प है जिसको बाबा ने पांच विकारों रूपी नाग कहा है, उसकी तो उन्होंने सैया बनाई हुई है। वरना सर्प को देखकर अमृत वेले कोई व्यक्ति अपने सैया में लेट सकता है? तो इसलिए आप गौर से देखिए उसमें निश्चय है। अब बाबा कहते हैं हम सब को चार प्रकार का निश्चय टेस्ट करना है। परमात्मा में निश्चय, अच्छा। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे सहज स्वभाव से कह देते हैं, बाबा में तो हमें निश्चय है ही, बाबा में तो सबको निश्चय है, क्योंकि बाबा के अंदर संशय करने का तो कोई मार्जन ही नहीं है। अब जरा टेस्ट कर लीजिए कि अपने जीवन में बाबा में निश्चय हम कितना रखते हैं और अन्य लौकिक चीजों में हम कितना निश्चय रखते हैं, उससे पता लग जाएगा। क्योंकि बाबा ने निश्चय का एक ही स्लोगन दिया हुआ है, एक बल एक भरोसा, ठीक है। अब आप देखिए कि सुबह से शाम तक अपने दिनचर्या में, चाहे हमारी मनसा है, चाहे वाचा है, चाहे कर्म है, संबंध है, संपर्क है, संस्कार है, स्वभाव है, अब इनमें हम एक बल और एक भरोसे से कितना चलते हैं और लौकिक साधनों, लौकिक संबंधों, लौकिक दुनिया के आधार पर कितना चलते हैं, तो पता लग जाएगा कि बाबा में हमारे कितने परसेंट निश्चय है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं अपने में निश्चय। अब स्वयं में निश्चय के लिए बाबा ने हमें अनेक पिलर, हमारी नींव को चारों तरफ से ठोका हुआ है। बाबा कहते हैं एक तो ड्रामा कि मुझ आत्मा ने ये पार्ट जो मैं बजा रहा हूं अनेक बार बजाया है, और जो परिस्थिति मेरे सामने जब भी आई है वो नथिंग न्यू है, अनेक बार आई है और उसको मैंने पार भी किया है, क्योंकि सारा चक्कर लगाकर दोबारा मैं उस परिस्थिति में 5000 साल के बाद आया हूं, तो पार भी किया है, परिस्थिति भी आई है। अब फिर भी आप देखेंगे कि ड्रामा ड्रामा कहते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की परिस्थितियों के विघ्नों के प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि गंगा राम नल पर बैठा है और कह रहा है गंगा राम नल पर नहीं बैठना, तो ड्रामा ड्रामा भी कर रहे हैं और डर भी रहे हैं। तो ये हमारा अपने पर निश्चय है, और अगर सदा निश्चय अपने पर रहता तो फिर ये स्लोगन नहीं होता कि निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती, संशय आत्मक बुद्धि विनेशंती। तो जरूर संशय आत्मक बुद्धि भी बने होंगे। और इसमें नोट करने की बात खास है कि बुद्धि के साथ निश्चय और संशय लगाया है, क्योंकि मन है जो उसको जहां पहुंचना होता है बिना सोचे पहुंच जाता है, और ब्रह्मा कुमार कुमारी का मन को तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। एक तो ज्ञान के आधार पर, एक फॉलो फादर के आधार पर, और गुणग्रही के आधार पर हमको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने पर संशय भी परसेंटेज में है, ड्रामा पर संशय भी परसेंटेज में है, और फिर सबसे कम परसेंटेज जो 33% से भी कम है, 5 मार्च से भी कम है, वो है अपने दैवी परिवार पर निश्चय या संशय। तो आप देख लीजिए क्या करते हैं कि दैवी परिवार का जो रूप बाबा देखता है, बाबा भी हमें देखता है, अब उन्ही बच्चों को देखता है जिनको हम भी देख रहे हैं। तो बाबा तो कहते हैं कि मेरा लास्ट बच्चा भी विशेष है, ऐसा कोई ब्राह्मण है ही नहीं जिसमें एक भी विशेषता ना हो, और बाबा उस विशेषता को देखते हुए बच्चे के ऊपर उसी तरस की नजर से, रहम की नजर से, उम्मीद की नजर से देखते हैं कि चलो बच्चा है, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, ठीक होकर ही जाना है, क्योंकि नई दुनिया में जो अवगुणी है या जो नेगेटिविटी है वो तो वहां जानी नहीं है। तो बाबा तो उस नजर से देखता है, आत्मिक रूप देखता है और श्रेष्ठ आत्मिक रूप देखता है, अर्थात उनकी सतो प्रधान अवस्था को देखता है, अविनाशी रूप देखता है, अनादि रूप देखता है और आदि रूप देखता है। और हम अगर दूसरों का ऐसे देख रहे हैं तो अपना भी ऐसे ही देखते होंगे। तो बाबा कहता है कि अपनी सीट पर सेट ही नहीं होते, हमारी असली सीट कौन सी है जिस पर हमें सेट होना है और जिसको छोड़ने से हम अपसेट हुए हैं, और अभी भी उस सीट को मिलने के बाद भी अगर हम सेट नहीं होते तो क्या समझा जाए, हैं? शान में नहीं रहेंगे तो परेशान होंगे। तब बाबा कहते हैं कि परिवार में भी पहले स्वयं को देखो और अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट हो। उसमें तो बाबा कहते हैं कि मैंने आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हर बच्चे को जन्म लेते ही एक समान पढ़ाई पढ़ाई है, एक समान पालना की है, एक समान वरदान दिए हैं, तो तुमको हाईएस्ट सीट पे सेट किया है। पिता के रूप में मैं भाग्य विधाता हूँ, शिक्षक के रूप में मैंने तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान दिया है, और दुनिया में ऐसी कोई शिक्षा नहीं जिसको लेकर व्यक्ति राजा बन जाए। राजा शिक्षा से नहीं बनता है, एजुकेशन से नहीं बनता है। राजा के राजकुमार राजकुमारियां प्रिंस कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो आपको प्रिंस या राजा की पदवी दिलाए। तो बाबा कहते हैं मेरी पढ़ाई भी ऐसी है। फिर गुरु के रूप में श्रीमत कहो, तो श्रीमत श्रेष्ठ बनाने वाली, इससे ऊंची कोई मत नहीं, वो हमको रोज मिलती है। गुरु वरदान देता है, हमें रोज वरदान मिलते हैं। आज भी कितना अच्छा हमको वरदान मिला है कि हमारी ओरिजिनल स्थिति पवित्रता की है, और पवित्रता की धारणा के लिए अगर कुछ त्याग भी करना पड़ता है तो अपनी पवित्रता को कंप्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन त्याग को ही भाग्य मानना है, और है भी ऐसा ही। तो जब हमारा प्राप्ति कराने वाला और फिर बाबा कहते हैं सर्व शक्तियां देने वाला, सर्व गुण देने वाला और उनके उपयोग की हमें पर और जिसको कहते हैं चांस देने वाला, एक सौभाग्य देने वाला कि हम अपने गुण शक्तियों प्राप्तियों को यूज भी कर सकें और ठीक स्थान पर यूज कर सकें, वो हमारा पिता है। और बाबा कहते हैं ये तुम्हारी सब अनादि अविनाशी प्राप्तियां हैं, फिर क्या हो जाता है? अगर आप अनादि और अविनाशी प्राप्तियों को किसी जिसको कहते हैं विनाशी चीज में डालो, यानी किसी परमानेंट चीज को किसी टेम्परेरी में डाल दो, तो जब टेम्परेरी गया तो वो भी गई, तो आपको उसका वैल्यू ही नहीं है। तब बाबा कहते हैं कि संगम की हर चीज अलौकिक है, अलौकिक माने रूहानी है, तो जो ही हम रूहानी से जिस्मानी में आते हैं तो खत्म खेल खलास। हीरों को आप कौड़ी के तुल्य गिन रहे हैं, इतने संगम युग के डायमंड बनाने वाला प्राप्ति कराने वाले समय को हम साधारण खो रहे हैं, कौड़ियों के बदले खो रहे हैं, तो फिर वो नशा कमाई का और वो खुशी और वो दुआएं कहाँ से मिलेंगी? इसलिए सब कुछ हिसाब लेते हुए बाबा कहते हैं जैसी स्मृति वैसी समर्थी। आप देख लीजिए, एक राजा है तो राजा को क्या सपने में भी भूलता है कि मैं राजा हूं? वो चल रहा है, फिर रहा है, साधारण कर्म भी करता है, वस्त्र पहन रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन उसके हर साधारण कर्म में भी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी झलकती है। वो राजा की तरह ही बिहेव करता है, व्यवहार भी करता है किसी से तो राजा की तरह करता है, अथॉरिटी से करता है, भरपूरता की स्थिति से करता है, उसके अंदर देने का कैपेसिटी भी रहती है और देने का ख्याल भी रहता है। कभी राजा कभी मांगता नहीं है, लौकिक राजा भी नहीं मांगता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपको देखना है कि सुबह से शाम तक मैं आत्मा कहां तक अधिकारी रूप से चलता हूं और कहां तक अधीन रूप में चलता हूं। अधीन मैंने गुलाम, वश में। मैं सुबह से शाम तक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा क्या किसी भी चीज के अधीन हूं? चाहे वो मेरी अधीनता, आप जानते हैं कई प्रकार की है, रॉयल अधीनता भी है, मन के अधीन हूं, बुद्धि के अधीन हूं, अपनी आदतों के अधीन हूं, पुराने स्वभाव संस्कार के अधीन हूं, या किसी आत्मा के प्रभाव में आने के कारण उसके अधीन हो, तो किसी भी प्रकार की अगर अधीनता है तो मैं अधिकारी नहीं हूं। बाबा ने तो हमें कुर्सी दी है, श्रेष्ठ स्थिति का आसन दिया है। अब बाबा कहते हैं कि तुमको तो इतना अधिकारी बनाया है कि प्रकृति भी तुम्हारे अधीन, सतयुग में देख लो, मन को तुम जीते हुए, और देवी देवता रूप में आप देखेंगे माया जीत, जगत जीत, प्रकृति जीत, हर चीज से जीत पहने हुए हैं। तो उसका जब हम पूछते हैं आज के समय का पुरुषार्थ क्या है, तो आज का समय तो बिल्कुल फाइनल समय है, तो हमारी फाइनल स्थिति दिखाई देनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं किसी चीज को शुरू करते हैं और जब वो समाप्ति की तरफ आती है, कंप्लीशन की तरफ आती है, संपन्नता की तरफ आती है, संपूर्णता की तरफ आती है, तो उसका रूप तो और हो जाता है ना, फाइनल हो जाता है। कोई फल भी है, पेड़ पे लगा हुआ है, पहले छोटा सा होता है, फिर हरा होता है, लेकिन जिस दिन वो फल पूरी तरह से पका हुआ होता है, तो आप पेड़ के पास से भी गुजर रहे हो तो आपकी नजर ना चाहते हुए भी उस पके हुए फल की तरफ जाती है। बाबा ने चंद्रमा का मिसाल दिया है कि जब पूर्णमासी होती है तो ना चाहते भी हर एक व्यक्ति का ध्यान फुल मून की तरफ जाता है, तो कंप्लीशन में आकर्षण होता है। तो बाबा कहते हैं आपके अंदर वो आकर्षण है कि आप आकर्षित करते हो या आकर्षित होते हो। जो आकर्षित होता है वो आकर्षित कर नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं माउंट आबू में देखो, आप लोग ज्ञान सरोवर में आए हो, ये बाबा की तपस्या भूमि का अंग है। तो योग तो आप अपने घर में भी लगा लेते हो, योग तो आप सेंटर पर भी लगा लेते हो, तो ऐसी कौन सी आकर्षण है जो आपको ज्ञान सरोवर तक लाई है? क्योंकि ये बाबा की तपस्या भूमि है, बाबा की वरदान भूमि है, ये सारा माउंट आबू ही इस प्रकार से है, तो इसलिए आकर्षण किया ना। आप तो दिल्ली इंडिया से ही आए हो, आप देखिए कि दुनिया के सबसे दूर देश वहां से भी आकर्षित होके आते हैं। तब बाबा कहते हैं कृष्ण का अर्थ ही होता है आकर्षित करने वाला, तो हमें ये देखना है। फिर तीसरी बात क्या है जिसको बाबा कहते हैं वेस्टेज खत्म। अब वेस्टेज खत्म में हम बाबा तो बताते हैं व्यर्थ संकल्प को, व्यर्थ बोल को, व्यर्थ व्यवहार को, व्यर्थ चिंतन को, सबको समाप्त करो, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है? तो बाबा कहते हैं कि एक समान होना चाहिए, अगर मन में अनेक शुभ संकल्प भी चलते हैं, मैं मेरा लक्ष्य ये है, मैं ये करूंगा, मैं ये करना चाहता हूं, मैं कर ही लूंगा, अंत घड़ी आएगी तो मैं सब कुछ बिल्कुल विरागी होकर के कर लूंगा, ये मन है। अच्छा, बुद्धि कहती है तुम बहुत सोच रहे हो, देख लो जो तुम सोच रहे हो वो कर पाओगे। अच्छा, जब कर्म में आता है तो बहुत थोड़ा, एकाग्रता ही नहीं होती। तो इसलिए हजार संकल्प करके और आपने पांच कर्म किए उसकी भेंट में, तो कितना व्यर्थ हुआ। अब सतयुग में क्या होता है, सतयुग में क्या है, जो संकल्प वही सिद्धि, उसी प्रकार का बोल, एक भी बोल ज्यादा नहीं या कम नहीं, एक भी संकल्प कम नहीं ज्यादा नहीं, और जो सिद्धि है, प्राप्ति है, वो पूरी की पूरी 100%। रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं है, प्रकृति सत्वप्रधान है, शरीर आपके अंत तक, देवताओं के शरीर आयु लंबी, लेकिन सारे जीवन में एकदम स्वस्थ रहते हैं, जो वो करना चाहे कर सकते हैं, मन भी पूरा स्वस्थ और शक्तिशाली रहता है, गुणवान रहता है, तो जो वो करना चाहे वो कर सकता है। बाबा ने हमें परिभाषा दी हुई है कि अगर आप अपनी स्थिति को देखना चाहो तो ये देख सकते हो कि मैं अपने मन को जब चाहूं, जहां चाहूं, जितना समय चाहूं वहां ले जा सकूं, और जब चाहूं उसको वापस ला सकूं। अब ये शक्ति देवताओं में थी, एक संकल्प उसकी पूरी सिद्धि। और अगर कलयुग में क्या है, जो भटकती हुई रूहें हैं, जिनका मन भटकता रहता है, तो समझो रूह भटकती हुई है ना, वो शरीर से निकलेगी तो भटकेगी, तो भटकती हुई रूहें, भटकती हुई बुद्धि, बाबा कहते हैं उनका क्या होता है, वो लगाना चाहते हैं संकल्प को एक तरफ, थोड़ी देर में देखते हैं तो लग जाता है दूसरी तरफ, पहुंचना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह पर, बृहस्पति की दशा चाहते हैं, और सेकंड में पहुंच जाते हैं शनि ग्रह पर या राहु या केतु पर। तो बाबा कहते हैं उसकी निशानी क्या है कि कलयुग में तमो प्रधान पतित आत्माओं में किसी को उनको मन टिकाना, एकाग्रता बहुत मुश्किल है। अब बाबा कहते हैं कि सारा खेल एकाग्रता का है। पहला प्रश्न जब हम ज्ञान में आते हैं, मैं कौन हूं, बुद्धि में ज्ञान मिलता है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आत्मा अविनाशी है, आत्मा के अंदर जो भरोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जाएगा, शरीर के लिए जो इकट्ठा करोगे वो आज भी गया कल भी गया, और वो इंद्रियों को सुख देने वाला है या दुख देने वाला है, और आत्मिक प्राप्तियां अति इंद्रिय सुख देने वाली हैं, संगम पर, जो केवल संगम पर ही मिलता है। अब आप देखिए इस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो चेक कर सकते हैं कि मेरा संकल्प 1-2 सिद्धि 1 है या संकल्प हजारों है और सिद्धि बहुत कम है। तो मन वाणी कर्म की समानता ये तभी हो सकती है अगर हम मन मना भाव हो। अगर हम बुद्धि से सोचता स्वरूप हैं तो बुद्धि संशय का स्थान है, बुद्धि संशय का स्थान है, संशयात्मक बुद्धि कहा जाता है। अर्थात आप कुछ भी संकल्प करेंगे उसकी दृढ़ता में संशय लाना बुद्धि का काम है। तो कई लोग समझते हैं मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत चतुर हूं, मैंने ना भी करनी हो है ना, बाबा भारतवासियों और विदेशियों में ये फर्क दिखाते हैं। कि विदेशी सच्चे दिल साफ दिल हैं, तो सच्चे दिल पर साहब राजी है। अब भारतवासी ने कोई कहे कि भी कल क्लास में आना, जरूर आना, कल क्लास में निर्मला दीदी आने वाली है, आओगे? तो देखिए, कोशिश करूंगा। अरे भाई ठीक तरह कहो ना, आऊंगा निश्चय से, कहो पूरी कोशिश करूंगा। अब ये कोशिश शब्द साथ है, कशिश होगी तो कहेंगे हाँ, कहेंगे अवश्य आऊंगा जी मैं, नहीं यहाँ कोशिश शब्द आ गया, यानी ना कर रहे हैं। अब कोशिश से आप समझ सकते हैं कि इसके आने का इरादा नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार का जो बोझ बुद्धि पर हम रखते हैं वो भी हमारे को मंदिर से दूर करे हुए है। तो सार में यूं कहें कि बाबा ने कहा है आपके और मंजिल के बीच में एक ही चीज आती है और वो है मैं और मेरा। अगर आपने श्रीमत में मन मत डाली, मन मत से श्रीमत को चेक करने की कोशिश की कि जो श्रीमत मन मत के साथ मिलती जुलती है वो तो ठीक है। बाबा कहता है बच्चे मन से योग लगाना है तो बैठने की जरूरत नहीं, किसी आसन लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा तो सहज योग है। आबू से ताजमहल देखने चले जाओ, सोमनाथ घूमो जाके योग ही लगाना है ना। तो कहेंगे हाँ हाँ, ये तो श्रीमत में 100% मानूंगा, ज्ञान सरोवर से मैं सोमनाथ का टिकट कटाता हूँ। जब बाबा कहते हैं कि बच्चे एकाग्रता की शक्ति बहुत आवश्यक है, हाँ, पांच बातें बाबा ने आ वाली बताई हुई हैं कि पहली बात तो यह एक नामी कि एक ही परमात्मा शिव। फिर बाबा कहते हैं उसके ऊपर एकाग्र, गीता में भी लिखा हुआ है मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप से मुझे याद करोगे तो मेरी प्राप्ति होगी, नहीं तो थोड़ा सा इधर उधर भी हुए तो मेरी प्राप्ति नहीं होगी। जो देवताओं को भजता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, आदि आदि। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं एकाग्रता के साथ एकांत चाहिए। एकांत का ये मतलब खाली कमरा या खाली जगह नहीं है, एकांत का मतलब है जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होता है, बुद्धि में अनेक संकल्प बेतरतीब जैसे कहते हैं ट्रैफिक जैम हो जाता है, अड़े हुए हैं, और उसके मध्य में आपका ये संकल्प है कि मैं एक बाबा को याद करूं तो नहीं चलेगा। फिर बाबा कहते हैं उसके साथ साथ एक रस भी चाहिए, अर्थात जैसे आपकी मूर्तियां किसी वक्त भी देखोगे तो एक ही पोज में मुस्कुराती हुई दिखेंगी, और किसी ब्राह्मण को देखो तो कभी वह बहुत खुश नजर आएगा, कभी उसके चेहरे पर चिंता के चिन्ह होंगे, कभी उसके चेहरे पर भय भी आ जाएगा, तो एक रस तो नहीं हुआ। और फिर बाबा कहते हैं इन सारी चीजों की प्राप्ति के लिए इकोनॉमी करो, अर्थात समेटो, यानी बोल में, पहले संकल्प में, फिर हर चीज में, व्यवहार में, कर्म में इकोनॉमी करो, बचत करो, क्योंकि अब आपको वापस जाना है। अब आप जानते हैं अगर आप हलवा भी बनाओ तो हलवा पहले तो सारी कढ़ाई के अंदर होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो अपनी संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त करता है तो सारे किनारे छोड़ देता है, बीच में इकट्ठा हो जाता है, और जो घी भी उसके अंदर एक्स्ट्रा होता है उसको भी त्याग देता है। तो कहते हैं अब हलवा तैयार है, इसने किनारे छोड़ दिए। अब बाबा कहते हैं आपने भी अपनी मंजिल को देखना है कि आपने पिछला किनारा छोड़ा या पिछले किनारे से भी रस्सियां बंधी हुई हैं और कह रहे हैं कि हम चप्पू चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मंजिल की तरफ जा रहे हैं। बाबा कहते हैं अब तो किनारे पर पहुंचने की बात आ गई है कि एक कदम कश्ती जो है किनारे से लग गई है, खाली हमने उठ करके उसमें से एक कदम से दूसरे कदम में जाना है। तो बाबा कहते हैं ये जो मैं है, मोटे रूप की मैं तो सब जानते हैं क्या, कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ठीक है, और मुझे वस्तुओं से, व्यक्तियों से, वैभवों से, हर प्रकार के लगाव झुकाव से न्यारा रहना है। ये तो बाबा कहते हैं मोटे रूप का मैं है। कईयों ने ये भी देखना है कि हमने वो भी छोड़ा है कि नहीं, लेकिन फिर सूक्ष्म रूप का जो मैं है वो बाबा कहते हैं बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। अर्थात परमात्मा के द्वारा दिए हुए प्रसाद यानी ज्ञान में आने के बाद जो हमको उपलब्धियां होती हैं, चाहे वो तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है, चाहे कोई गुण है, चाहे कोई विशेषता है कि हमारी बुद्धि को बाबा विशाल कर देता है, चाहे कोई कला है उसको भी बाबा बहुत शक्ति देके बहुत बड़ी कर देता है, विस्तार में ले जाता है। उन कलाओं का मैं, जैसे मेरे जैसी बुद्धि किसी की नहीं, मेरे जैसा ज्ञान कोई नहीं सुनाता, मेरे जैसा सेवा कोई नहीं करता, मैंने ये किया मैंने ये किया, तो बाबा कहते हैं ये मैं कहां से आ गई। प्रसाद के भगवान की दी हुई विशेषताएं हैं, परमात्मा के दिए हुए अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें परमात्मा का थैंक्स करना चाहिए और निमित्त समझना चाहिए कि हम भगवान तेरा शुक्रिया तूने मुझे निमित्त बनाया। उसकी बजाय निमित्त के ना होगा तो निर्माण भी नहीं होगा। उन चीजों का सूक्ष्म अभिमान, बुद्धि का अभिमान, त्याग का अभिमान, सेवा का अभिमान, मेरी ही माननी चाहिए, अगर मेरी नहीं माननी तो मूड ऑफ कर लेना, बाबा कहते ये बहुत खतरनाक तरह का मैंपन है। इसलिए इस मैं को छोड़ो, इसलिए शिवरात्रि पर बलि चढ़ाई जाती है। तो इस मैं की महाबलि अगर हम चढ़ाते हैं कि निमित्त हूँ, बाबा आपका शुक्रिया आपने मुझे निमित्त बनाया है, जो भी प्राप्तियां आपने कराई हैं वो प्राप्तियां मैं सेवा में लगाऊं, रिटर्न दूं और मेरे अंदर कभी भी लिमिट ना आए, तब बाबा कहते हैं आप बेहद के दृष्टिकोण रख सकते हो, विशाल हृदय और विशाल बुद्धि कर सकते हो, वरना वो मैं जो है आपको फिर मेरा स्थान, मेरा सेंटर, मेरी पोजीशन, मेरी लौकिक प्रॉपर्टी, मेरा ये वो सारा आपको अलौकिकता से लौकिकता में ले आएगा और आप अति इंद्रिय सुख और संगम युग की जो यात्रा है उससे वंचित हो जाएंगे। अब बाबा कहते हैं लास्ट में, बाबा ने हमको अव्यक्त होते समय लास्ट तीन वर्ड हमको दिए थे, शब्द दिए थे, हम जानते हैं निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। बाबा कहते इनको ही प्रैक्टिस कर लो। मैं भी जब अव्यक्त हुआ था, बाबा कहते हैं इन तीनों स्थितियों को मैंने धारण किया था, अर्थात निराकारी। तो बाबा कहते हैं मनसा निराकारी, संकल्प जो है अपना निराकारी स्थिति में रह करके करो, और मनसा के द्वारा आप अन्य आत्मा को शक्तियों का दान दो। और फिर वाचा, वाचा में बाबा कहते हैं निरअहंकारी, हमारी वाचा मीठी होनी चाहिए, नम्र होनी चाहिए, दूसरे को ठंड पहुंचाने वाली होनी चाहिए, टोंट लगाने वाली या व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, मुस्कुराहट से होनी चाहिए। उसके द्वारा ज्ञान का दान। और कर्मणा में बाबा कहते हैं कि कर्मणा में आप गुणों का दान दो, और साथ मोटी बात है गुण ग्रही बनो, गुण देखो, किसी कोई अवगुण धारी भी है उसको भी गुण देखो, उसके अंदर अवगुण को त्याग दो, उसको हेल्प करो अपने अवगुण को छोड़ने की, ना कि उससे घृणा करो, किसी से ईर्ष्या नहीं करो, दुश्मनी नहीं करो, बदले की भावना नहीं रखो। ये सब बाबा हमको रोज सुनाते हैं। इन चीजों को बाबा कहते हैं चेक करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो लापरवाही से महीनों बीत जाते हैं, वर्षों बीत जाते हैं, पता भी रहता है अंदर, दिल बोलता है ये ठीक नहीं है, फिर भी अलबेलेपन से करते रहते हैं, हो जाएगा ठीक कर लेंगे। तो चेक करो और परिवर्तन करो। तो वास्तव में वर्तमान समय जो जो ज्ञान सुना है उसका स्वरूप बनने का है, अर्थात उसको जीवन में लाकर अपने जीवन को मनसा से लेकर परिवर्तन करने का है। जितना हमने परिवर्तन कर लिया वो हमारा। उसके बाद बाबा कहता है सतयुग में तो तुमको ये ज्ञान मिलेगा नहीं, और फिर जो ले लिया वो पा लिया, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ओम शांति।